الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو رمضان، یہ بقرہ عید کی چھٹیوں کے بعد ہم آج اپنی ایک کلاس دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، سورہ یوسف. ہم اس والی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں اس کی تفسیر معرفہ قرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات آج کل چل رہی تھیں پچھلی کلاس میں جو چل رہی تھیں وہ 83 سے 87. تو ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے ان کا، خلاصہ تفسیر ہو گیا تھا، معرفہ مسائل بھی بلکہ مکمل ہو گئے تھے. اور اب آخری اس میں عنوان حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے رکھا تھا، احکام و مسائل. ٹھیک ہے، احکام و مسائل، یعنی جو ان آیات میں سے ہمیں شرعی احکامات ملتے ہیں یا کوئی ایسے یعنی پوچھے جانے والے مسئلے ملتے ہیں، مسائل. تو اس کے تحت حضرت فرماتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ تعالی کی قضا پر راضی ہونے سے کرے. اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتداء کرے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لازم ہے، اور شرعی اصطلاح کے اندر واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری ہے کرنا، اگر کر لیا تو ثواب ملے گا، اور صبر والا تو ثواب. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کر لیا تو اس کے اوپر تو بغیر بلا حساب، یعنی بے حساب. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بے حساب، بے حساب اجر ملے گا، بہت اجر ملے گا. تو واجب کرنے کے اوپر ثواب ملتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کے واجب کے اوپر عمل کر رہا ہے. اگر صبر والے واجب پہ عمل کر رہا ہے تو بے حساب اجر ملے گا، لیکن اگر نہیں کر رہا تو پھر گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو مصیبت کے اوپر صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی ہونے سے کرے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے علاج، یہ ہے علاج، صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی ہونا. اور یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو وہ اسی لیے ہمارے لیے بیان فرمائے کہ ہم ان کی اقتداء کریں، ان کو فالو کریں. تو اب یہ جو صبر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور صبر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، صبر کرنے کا مطلب کیا ہے اور صبر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے. صبر کا مطلب کہ یعنی صبر کی تو ویسے بہت ساری مختلف شکلیں ہوتی ہیں. یعنی علماء نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہشتی زیور والی کتاب کے اندر 5 مختلف قسموں کا صبر بڑی اچھے سے، بڑے آسان سادہ لفظوں میں بیان فرمایا ہے. لیکن ان 5 میں سے ایک قسم کا صبر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا. تو اس کا مطلب کیا کہ شکوے شکایات نہ کرے. ٹھیک ہے، شکوہ شکایت نہ کرے، اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی آنسو بہانے سے زیادہ زور آواز کے ساتھ روئے دھوئے نہیں. ٹھیک ہے، کپڑے نہ پھاڑے، بال نہ نوچے، اس قسم کی حرکتیں نہ کرے. ٹھیک ہے، ایک ہو گیا شکوہ شکایت نہ کرے، دوسرا ہو گیا کہ ہائے واویلا نہ کرے. آنسو بہانا اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اس کی اجازت. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنسو بہائے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صبر کرنا. दूसरा क्या था कि हाँ दूसरा क्या कि यानी क्या ना करे और क्या चीज ना करे, ठीक है, वो ये है कि जब कोई मुसीबत आ जाए ना तो उसका इलाज करने के लिए एक और रास्ता होता है। वो रास्ता ये होता है कि कोई नाजायज तरीका इख्तियार करके उस मुसीबत को टालने की कोशिश करे, ठीक है, कोई नाजायज इस रास्ता इख्तियार करके उस मुसीबत को टालने की हटाने की कोशिश ये ना करे, ठीक है। तो सब्र की तीसरी शक्ल क्या हो गई, मुसीबत के ऊपर सब्र की तीसरी शक्ल क्या हो गई, एक तो हो गया ना पांच हुसैन के सब्र हैं, और पांच में से जो है वो मुसीबत वाले सब्र, उसकी भी तीन शक्लें आपके सामने अभी बयान हो गई। पहला कि शिकवा शिकायत ना करे कि क्यों हो गया मेरे साथ ही क्यों होता है, चीख चिल्ला नहीं कर रहा है, ठीक है, कपड़े नहीं फाड़ रहा, बाल नहीं नोच रहा, लेकिन जुबान से शिकायत, क्यों हुआ मेरे साथ, वाई मी, वाई डिड इट हैपन टू मी, क्यों किया मेरे साथ अल्लाह ताला ने ऐसा, ठीक है, तो इसको कहते हैं शिकवा शिकायत करना, ये ना करें। दूसरी चीज कि कपड़े ना फाड़े, चीखना चीखम चिल्ला मार धाड़ की उल्टी सीधी हरकतें ना करें। और तीसरी चीज क्या है कि सबके मुसीबत को टालने के लिए कोई क्रुक क्रुकेड वे, क्रुकेड वे होता है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, नहीं बाय क्रुक जो है ना वो उसको टालने की कोशिश ना करे, ठीक है। जैसे कि कोई मुसीबत आई हुई है, अब कोई साहब जो है ना वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो अब जो है ना उन साहब को यानी किसी नाजायज तरीके से रास्ते से हटाने की कोशिश करना, ठीक है भाई, जितनी मुसीबत आई हुई उतना ही उनके साथ अपील करें, तो उससे ज्यादा ना करें। और जैसे कि यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम का भी वाकया है कि अब सब्रुन जमील का मतलब ये भी नहीं है कि उसको टालने के लिए जायज रास्ता भी इख्तियार ना करें, राइट, मुसीबत को हटाने के लिए मुसीबत का इलाज करने के लिए जायज रास्ता भी इख्तियार ना करें, नहीं ये नहीं है सब्र, ठीक है, ये नहीं है सब्र। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जायज रास्ता इख्तियार किया जब अल्लाह ताला ने उनके दिल में ख्याल डाला कि ऐसे करो, ठीक है ना, कि अपने बेटों को कहो कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है वो तलाश करो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है ना वो मायूस मत होना, है ना, 40 साल पता नहीं कितने साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 80 साल गुजर गए दोनों रवायात के मुताबिक, है ना, लेकिन फिर भी जब अल्लाह ताला ने दिल में एक आइडिया डाल दिया और वो आइडिया जायज आइडिया था, जायज आइडिया था, ठीक है ना, तो उसको इख्तियार सही है, फतहससु मिन यूसुफा व अखी वला तैअसु मिन रौह अल्लाह, ये जायज रास्ता इख्तियार किया, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि कुछ कुछ ने जो है वो कागज के ऊपर लिख लिया होगा, कुछ ने कागज नहीं होगा सामने तो दिल के कागज के ऊपर लिख लिया होगा, ठीक है। तो सब्रे जमील और अल्लाह ताला की कजा पर राजी होना, इसकी कुछ तफसील, फिर उसके बाद फरमाते हैं कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक इंसान जिस कदर घूंट पीता है, यानी जो भी घूंट पीता है ना उन सब में दो घूंट ज्यादा महबूब हैं, एक मुसीबत पर सबर और दूसरे गुस्से को पी जाना, ठीक है, यानी सबर का घूंट पी लेना और गुस्से का घूंट पी लेना, यानी काज़िमीन अल-ग़ैज़, काज़िम भी जो है ना वो पीने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, तो गैज़ और गजब को जो है ना वो पी जाना, उसको जो है वो बाहर निकालना शुरू मत कर देना, ठीक है। तो ये दो बेहतरीन घोट हैं जो कि कोई इंसान पीता है। अब ये मुहावरतन है, जाहिर है कोई सबर जो है वो किसी लिक्विड फॉर्म में तो आता नहीं है, और ना जो है वो गुस्सा जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो ये मुहावरा है, अरबी जुबान के अंदर भी ये मुहावरा इस्तेमाल होता है, उर्दू जुबान के अंदर भी ये पीने वाला मुहावरा इस्तेमाल होता है, सबर के लिए भी और गुस्से के लिए भी। और हदीस में बरिवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, मन बसा लम यस्बिर, यानी जो शख्स अपनी मुसीबत सबके सामने बयान करता फिरे उसने सबर नहीं किया, जो शख्स अपनी मुसीबत सबके सामने बयान करता फिरे उसने सबर नहीं किया, ठीक है। अब ये आदत होती है औरतों की उमूमी तौर पर, यह आदत होती है, और कुछ मर्दों की खसूसी तौर पर यह आदत होती है, यानी मर्दों में ये आम नहीं है ये वाला मसला, लेकिन होते हैं कुछ मर्द भी औरतों की सिफत वाले, तो उनमें भी आदत होती है कि सबके सामने जहां बैठे वहां जो है ना वो तेरा फसाना छेड़ देते हैं। अब किसका फसाना, हमारे मशायख जो है ना वो अल्लाह का फसाना छेड़ते हैं, जहां बैठे वहां तेरा फसाना छेड़ देते हैं। और ये जो ऐसे नेचर वाले लोग होते हैं वो अपनी मुसीबतों का फसाना छेड़ देते हैं, ठीक है। तो अपनी मुसीबत किसके सामने बयान करनी है? अल्लाह के सामने, और सिर्फ उस शख्स के सामने जो के साहिबो राय हो और अहले मशवरा हो, अहले मुआमला हो, यानी जो के सही मशवरा देने की अहलियत रखता हो, ठीक है ना, जो आपको सही मशवरा देने की अहलियत रखता हो, यानी साहिब इल्म हो, उसके पास दीन का इल्म हो, जरूरी दीन का इल्म। ये नहीं है कि कोई आलिम फाजिल शेखुल हदीस और जो है वो अल्लामा कबीर होगा तब बस उसके सामने बयान कर सकते, नहीं, बल्कि जरूरी दीन का उसके पास इल्म हो, और वो यानी नफ्स के ताबे जिंदगी ना गुजारता हो। ऐसा ना हो कि वो बायस्ड हो, आपको बायस्ड ओपिनियन देगा, आपको जो है ना वो कोई यानी जहालत का या जो है वो नफ्स से मغلوب होकर के आपको ओपिनियंस देगा, नहीं, ऐसा शख्स नहीं, बल्कि ऐसा शख्स जो कि अनबायस्ड ओपिनियन आपको विद नॉलेज दे सके, ऐसे शख्स के सामने मुसीबत बयान कर सकते हैं। लेकिन वो मुसीबत भी क्यों बयान करना कि ताकि उस मुसीबत का हल तजवीज किया जा सके, मुसीबत का हल तजवीज किया जा सके, ठीक है। तो सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करना ही नहीं है कि सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करना, नहीं, बल्कि जहां पर आपको कोई सोल्यूशन पॉसिबल मिल सकता है सिर्फ वहां पे बयान करना। और उसके लिए जो है ना वो लाजमी है कि आपका पहले से ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक हो जो कि इल्म वाले हो, ठीक है, जिनके पास जो है वो मुआमलात का इल्म हो, और आपका भी इल्म, आपके बारे में भी वो जानते हो, क्योंकि अच्छा मशवरा जो है ना वो उसी वक्त मिल सकता है जबकि बैरूनी इल्म भी हो मशवरा देने वाले के पास, और जिसके साथ मामला पेश आया है उसके बारे में ज़ाती लेवल की नॉलेज भी हो, तब जो है ना वो एक बेहतरीन और मुकम्मल मशवरा दिया जा सकता है, ठीक है ना। वरना जो मशवरा दिया जाएगा सिर्फ बैरूनी इल्म की बुनियाद पे कि हाँ भाई ऐसा होता है, उसूल ये है, कवायद ये हैं, दुनिया के अंदर मामलात ये हैं, इसकी बुनियाद पे मशवरा देना, ठीक है भाई, इल्म वाला है, दुनिया के मामलात का इल्म है उसके पास, उसूल और कवायद का इल्म है उसके पास, उसने इनकी रोशनी में आपको मशवरा दे दिया, लेकिन वो मशवरा भी नाकिस होगा, वो मशवरा नाकिस होगा, उसके अंदर नुक्स होगा, कमी बेशी होगी। क्यों? इसलिए कि उस शख्स के पास आपके अहवाल का इल्म नहीं है, दुनिया के अहवाल का इल्म है, शरीयत का इल्म है, लेकिन आपका तो इल्म नहीं है ना, आपका तो इल्म नहीं है ना, ठीक है। तो उसका मशवरा अगरचे के किसी जाहिल के मशवरे के मुकाबले में बेहतर मशवरा होगा, लेकिन फिर भी नाकिस होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो दीन में ऐसा जो शख्स होता है ना उसको शेख कहा जाता है, पीर कहा जाता है, और मुक्तदा कहा जाता है, या उसको जो है ना वो अंग्रेजी के अंदर मेंटोर कहा जाता है या काउंसलर कहा जाता है, ठीक है ना। आज घर में भी बात हो रही थी कुछ हजरात के साथ, पहले भी बात हो चुकी है, स्टूडेंट काउंसलिंग, राइट, कि भाई कौन सा वाला कोर्स करना है, कौन सा वाला कोर्स नहीं करना है, उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इवन स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं, या उनको स्टूडेंट गाइड यानी गाइडेंस काउंसलर्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है उसके, कोई मेंटोर कहता है, कोई काउंसलर कहता है, कोई गाइडेंस कहता है, कोई गाइड कहता है, पर्पस इज द सेम, कि वो कस्टमाइज वो मशवरा दे सके उस स्टूडेंट के अहवाल के मुताबिक, दे सके उस स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज के मुताबिक मशवरा दे सके कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, आपके लिए मुफीद है, आपने अब तक जो है ना वो ये किया है तो इसके ऊपर आप ऐसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं वन साइज फिट ऑल, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों के अंदर उमूमी तौर पर, अब तो काफी इसमें भी उन्होंने कुछ इम्प्रोवाइज किया है थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर, लेकिन क्या है, अगर आपने जो है वो यानी जाके पढ़ना है तो बस जो स्कूल के अंदर एक सेट करिकुलम है हर बच्चे को वही पढ़ाया जाएगा, हर बच्चे को वो पूरा का पूरा पढ़ाने की कोशिश की जाएगी और एक ही तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। भाई बच्चे मुख्तलिफ हैं, उनकी सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, उनकी अल्लाह ताला ने यानी उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाई हैं, लेकिन सबको एक ही लाठी से हाँकना है, ठीक है ना। अब इसको जो है वो थोड़ा इंप्रूव किया इंसानों ने, अपनी अकल अपनी समझ भाई, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इस वजह से एक काफिर भी अगर अपना कॉमन सेंस सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो भी इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि भाई हर एक के लिए एक ही चीज नहीं होती। इस वजह से आप देख लें कि जो ये जो ऑक्सफोर्ड, जिसको कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के जरिए से आज भी राज कर रहे हैं, आज भी राज कर रहे हैं, आज भी सल्तनत बरतानिया का सूरज गुरूब नहीं हुआ है, आज भी सल्तनत बरतानिया का सूरज गुरूब नहीं हुआ है। सारी दुनिया में उनका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, सारी दुनिया में उनके गुलाम तैयार हो रहे हैं। आप देख लें कैम्ब्रिज के एग्जाम्स कहाँ कहाँ होते हैं, हर जगह होते हैं, हत्ता के अमेरिका में भी होते हैं, जो कि इनका माई बाप है ना, वहां पर भी कैम्ब्रिज के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम कहाँ नहीं है। तो उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है कि भाई आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, राइट। ये नहीं है कि आपने यही लेना है तब आप जो है वो आगे बढ़ेंगे, वरना आपको वो फेल कर दिया जाएगा, वरना आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कस्टमाइज, कल हमारे एक दोस्त शायद क्लास में भी मौजूद हो, बता रहे थे जी इंडिया वालों ने भी इसके अंदर काम किया है। तो उनके यहाँ भी NIOS एक बोर्ड है, वहां पर भी आप अपनी मर्जी से कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइज्ड, राइट, एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी कस्टमाइज्ड, ऑल्टरेबल अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। लेकिन इसके लिए सिर्फ स्टूडेंट अपने अकल के मुताबिक फैसला करेगा तो भाई उसका तो एक्सपीरियंस बहुत कम है ना, उसी तरीके से पेरेंट्स का भी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बहुत कम होता है। तो इसके लिए किसी शेख नुमा शख्स की जरूरत होती है, शेख नुमा, उसको यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट काउंसलर या स्टूडेंट गाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे फिर जो है ना वो यानी सलाहियतें निखर करके सामने आती हैं और बच्चा जो है वो फिर यानी उसकी उससे फायदा होता है, उसको फायदा होता है और उससे फायदा होता है, ठीक है। तो मुसीबत सबके सामने बयान करना नहीं, बल्कि अहले मशवरा, अहले राय और अहले इल्म के सामने बयान करना, जिससे कि आपको कस्टमाइज और यानी आपकी सेल्फ लेवल के ऊपर जाकर के मशवरा मिल सके उस मुसीबत को हल करने का, ठीक है जी। बहुत कुछ बोल दिया, कोई सवाल आगे चलें भाई। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस सबर पर शहीदों का सवाब अता फरमाया, और इस उम्मत में भी जो शख्स मुसीबत पर सबर करेगा उसको ऐसा ही अजर मिलेगा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस शदीद इब्तिला वह इम्तिहान की एक वजह यह बयान की है कि जो बाज रिवायात में आई है कि एक रोज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद पढ़ रहे थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने सो रहे थे। अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुछ खर्राटे की आवाज निकली तो उनकी तवज्जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ चली गई। फिर दूसरी और तीसरी मरतबा ऐसा ही हुआ तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से फरमाया कि देखो ये मेरा दोस्त और मकबूल बंदा मुझसे खिताब और अर्ज मारूज करने के दरमियान मेरे गैर की तरफ तवज्जो करता है, ठीक है, यानी नमाज के अंदर है। तो नमाज, और वो भी किसकी, नबी की नमाज, राइट। तो नबी की नमाज में ये बेटे वाली मोहब्बत जो है ना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। तो बेटा तो बहरहाल अल्लाह ताला का गैर है। तो ये एक वाकया जो है वो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने बयान किया है, तो वो अपनी तरफ से बयान नहीं किया बल्कि उन तक पहुंची कोई रिवायत कि भाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया या किसी सहाबी ने बयान किया, तो ऐसा जो है ना वो हुआ। तो फरमाते हैं कि जी अल्लाह ताला इस पे नाराज हुए और फरमाया कि मेरा मकबूल बंदा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मकबूल बंदा है, और मुझसे खिताब और अर्ज मारूज करने के दरमियान मेरे गैर की तरफ तवज्जो करता है। कसम है मेरी इज्जत व जलाल की कि मैं इनकी ये दोनों आंखें निकाल लूंगा जिससे ये मेरे गैर की तरफ तवज्जो करता है या की है, और जिसकी तरफ तवज्जो की है उसको उनसे मुद्दते दराज के लिए जुदा कर दूंगा, ठीक है। तो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ, किसी हम जैसों के साथ अगर होने लगे तो फिर तो हम अंधे और बहरे और गूंगे ही जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि हमारा तो मामला बहुत ज्यादा खराब है ना। लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा मामला जो है ना वो सिर्फ मुकर्रबीन के साथ होता है, मुकर्रब जो अल्लाह ताला के बहुत करीबी होते हैं। और क्यों मुकर्रबीन के साथ होते हैं भाई, उन्होंने इतनी मेहनत करी, उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, उन्होंने इतनी इबादतें करी तो वो अल्लाह ताला के मुकर्रब हो गए। अब इतनी मेहनतें करने के बाद मुकर्रब हुए, अब जो है ना वो सजा भी उतनी बड़ी मिल रही है, नहीं। क्यों کیونکہ مقرب جو وہ ہوئے ہیں نا وہ اپنی محنتوں کی وجہ سے مقرب نہیں ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی، انہوں نے یہ محنتیں کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کے ان کی ساری محنتوں کو قبول بھی کر لیا، تب وہ مقرب ہوئے. صرف اپنی محنت کی بنیاد پہ مقرب نہیں ہوئے، ورنہ محنتیں تو شیطان نے بھی سب سے زیادہ کری، چپے چپے کے اوپر شیطان نے بھی سجدہ کیا تھا، توفیق تو اس کو بھی ملی نا سجدہ کرنے کی، توفیق کے بغیر شیطان بھی سجدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے سجدے کیے، اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، لیکن قبول نہیں ہوا، مقبول نہیں ہوا، مردود ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کو جب اتنا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اتنا جو ہے وہ بڑا مقام عطا فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان ہے بھائی، حسینوں کو ہر بات سجتی ہے، حسینوں کو ہر بات سجتی ہے. اب جو ہے نا وہ ان سے غلطی ہوگی، اب ان کو جو ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی دیں گے. اب یہ والی سزا جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہی ہے، آخرت کی سزا نہیں ہے، اور نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ، یہ گناہ کا معاملہ نہیں تھا، یہ صرف وہ تھا کہ جی یعنی جو اولا کام کرنا تھا، جو پریفرڈ کام کرنا تھا، اس کی بجائے جو ہے نا وہ لیس دین پریفرڈ انہوں نے کام کر لیا. تو گناہ تو یہ شریعت کے اندر ڈیفینیٹلی نہیں کہلائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈ جو ہیں ان کے لیے پھر بڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے بس اصول کیا ہے اس کے اندر، ہم نبی نہیں ہیں، نہ کبھی بن سکتے ہیں، تو ہم کیوں، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کتاب ہدایت پڑھ رہے ہیں نا، تو ہدایت کیا ہے ہمارے لیے اس کے اندر؟ ہدایت اس کے اندر یہ ہے جو آپ بتائیں گے. صحیح، ہدایت ہمارے لیے کیا ہے اس کے اندر؟ اصول، واٹ از دا ٹیک اوے پرنسپل فار اس، یہ آپ بتائیں گے. ٹیک ہوم ہمارے لیے کیا ہے اس کے، ہم تو نبی تو نہیں ہے، تو پھر یہ قصے کہانیاں کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی آپ علیہ السلام کی؟ ہمارے لیے کیا اصول ہے بھائی، کیا ہدایت ہے؟ Strive for keeping our niyat correct at all times. اتباع کریں گے تو کامیاب ہوں گے. تو اتباع کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے بھی بچہ سو رہا ہوگا نا، تو اس کے خراٹے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اتباع تو اس معاملے کے اندر اتباع تو یہ ہو رہی ہے، اتباع کریں گے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والی بچے کی طرف متوجہ. نیت کریکٹ ایٹ آل ٹائمس تو ذرا فٹ نہیں ہو رہا نا یار، اللہ کی جان بوجھ کر نافرمانی نہ کریں. اب کہاں کی کہاں لے کر کے آ رہے ہیں، مطلب یعنی بات کچھ ہو رہی ہے آپ نہیں، کچھ ریلیونٹ ہونا چاہیے نا معاملہ. ہمارے لیے اس کے اندر اصول کیا ہے بھائی، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی سزا کیوں ملی کہ بیٹے کو جو ہے نا اتنے سالوں کے لیے جدا کر دیا گیا، اور رو رو کر کے آنکھیں جو ہیں وہ ان کی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، بینائی کی صلاحیت واپس لے لی، ٹھیک ہے؟ ہم اگر گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، میں یہ عمل سو یجزا بھی. یعقوب علیہ السلام نے تو گناہ کیا ہی نہیں، تو یہاں پہ گناہ والی بات بھی کہاں سے آ بھائی. چلے چلے، تو اصول کی بات یہاں پر یہ ہے، تو اتنا اس عارض نے آپ کے سامنے کہا نا کہ وہ مقرب تھے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کیا ان کو، تو چونکہ ان کا مقام بلند تھا تو ان کو سزا بھی اسی حساب سے ملی، اگرچہ کہ غلطی ان سے بہت چھوٹی سی ہوئی تھی، لیکن سزا بڑی ملی. تو اصول اس کے اندر یہ ہے کہ اصول اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت، جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی اس نعمت کے ساتھ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی نا، اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ناقدری، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی شان میں گستاخی ہوگی اگر ہم کہیں گے کہ انہوں نے ناقدری کری نعمت، بے ادبی ہوگی، ہم نہیں بے ادبی کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی سی بھی بڑی نعمت اگر ملے گی نا، تو بڑی نعمت کے ساتھ اگر کچھ گڑبڑ کا ہی لفظ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سزا بھی بڑی، ٹھیک ہے؟ یعنی اگنور نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کو جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جائے اگر بڑی نعمت ملی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے اصول ہے. اب ہم اپنی نعمتوں کو دیکھ لیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہے نا، کیسی عمومی نعمتیں تو ماشاءاللہ سب کے پاس ہی ہیں، لیکن خصوصی نعمتیں، کسی کو مال و دولت کی نعمت دی ہے، کسی کو اولاد کی نعمت دی ہے، کسی کو عزت اور مرتبے کی نعمت دی ہے، किसी को अमन और सुकून की नेमत दी है। ये अमूमी नेमतें नहीं है, ये खसूसी नेमतें हैं, ये खसूसी नेमतें हैं, ठीक है। तो खसूसी नेमतें जब हमारे पास है ना, तो हम संभल के रहें, ये हमारे लिए टेक होम प्रिंसिपल है। हम संभल के रहें, हम डरते रहें, ठीक है ना, खशियत की हालत में रहें, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा नेमतों में डूबे हुए लोग हैं। तो बस हर वक्त कैफियत यही हो कि अल्लाह मेहरबानी, अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए, अल्लाह नाराज हो गए, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, ठीक है ना। बस गोया के जैसे है ना, एक छोटा बच्चा आपने कभी कार्टून में देखा होगा या कभी अपने मोहल्ले वोल्ले में देखा होगा, कोई बड़ा लड़का जो है ना, वो किसी छोटे बच्चे को जब हाथ उठाता है कि अब मैं लगाऊंगा तुम्हें, तो छोटा बच्चा क्या सोचता है, मत मारना मत मारना, एकदम जो है ना वो माफी मांगना और अपना हाथ है अपने आप को बचाने के लिए रखता है, मत मारना मत मारना, प्लीज 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 मत मारो मत मारो, राइट। अल्लाह ताला से खशियत जिसको होती है ना, उसके दिल का यही हाल है, उसके दिल का यही हाल है, अल्लाह माफ कर दिया, अल्लाह माफ कर दिया, अल्लाह मेहरबानी फरमा दी, अल्लाह अपनी नेमतों को सलामत रखिए, अल्लाह जवाले नेमत का अजाब ना फरमा दिया, ठीक है। क्या करेंगे हम अगर अल्लाह ताला ने इन नेमतों में से कोई एक भी वापस ले ली, क्या करेंगे उसके। जरा थोड़ा सा मुराकबा, अगली दफा मुराकबा करें ना, तो वो लतीफा कल्ब वाला मुराकबा के बजाय थोड़ी देर के लिए ये वाला मुराकबा रहे, अल्लाह ताला ने कोई नेमत वापस ले ली, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। हमारे चिश्तिया सिलसिले के मशायर जो है ना, वो मौत का मुराकबा यही करवाते हैं, जिंदगी की नेमत वापस ले ली अल्लाह ताला ने, अब क्या हुआ उसके बाद, है चारपाई पे पड़ा हुआ है, लोग आकर के रो धो रहे हैं, और फिर जो है वो गस्साल आकर के गुस्ल दे रहा है, फिर कफन पहनाया जा रहा है, फिर उसके ऊपर जो है वो आपको वो लुबान लगाया जा रहा है, उसके बाद जो है ना वो डाल करके चादर वादर चढ़ा करके नमाज जनाजा पढ़ाई पढ़ी जा रही है, फिर कब्र की तरफ ले जाया जा रहा है, फिर कब्र में उतारा जा रहा है, ये क्या है, ये क्या किस चीज का मुराकबा है, जिंदगी की नेमत के छिन जाने के बाद क्या हुआ, ये उसका मुराकबा है, हालांकि छिनी नहीं है अभी, ठीक है। तो नेमत की कदर, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा आगे फरमाते हैं कि इसीलिए बुखारी की हदीस में बरिवायत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा वारिद है कि उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि नमाज में किसी दूसरी तरफ देखना कैसा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके जरिए शैतान बंदे की नमाज को उचक लेता है, वल अयाज बिल्लाह सुब्हानहू, ठीक है। यानी किसी दूसरी तरफ देखना, ये शैतान का उचक लेना है, ठीक है। अब ये जो है ना, एक बहुत ही हमारे जहनों में जो है ना, ये एक बड़ा कंफ्यूज्ड एरिया है, बड़ा कंफ्यूज्ड एरिया है कि नमाज में कंसंट्रेशन, नमाज में कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है। वी डोंट रियली नो व्हाट इट मींस, तो हमें खुद भी पता नहीं होता कि करना क्या है कंसंट्रेशन, और हम दूसरों को भी अजीब अजीब मशवरे देना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से पता नहीं वो मौजूद हैं, उन्होंने हमसे कोई बात करी कि भाई फलाने शख्स ने ना, कोई उनके थे बुजुर्ग, तो उन्होंने उनको कहा कि भाई आप जो है ना वो क्या वाकई आप बिलीवर हैं, क्या वाकई ईमान वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा पता नहीं मुझे, सही है। तो अब उन्होंने कहा भाई कैसे पता चलेगा कि आप वाकई ईमान वाले हैं, तो किसी से जाके उन्होंने सवाल किया कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई मैं ईमान वाला हूँ, अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, और दीन पर ईमान है मेरा। तो जिन्होंने जिनसे मशवरा किया, उन्होंने जवाब दिया कि भाई इसका क्राइटेरिया ये है कि आप नमाज में कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि नहीं करते, और आप तिलावत में कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि नहीं करते। अब ये लफ्ज कॉन्सेंट्रेट जो है ना, ये माशाल्लाह बता दिया, अब मतलब क्या है भाई इस कॉन्सेंट्रेशन के लफ्ज का, तिलावत में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नमाज में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अल्लाह अकबर कहा और उसके बाद फिर आलम बाला की सैर करना शुरू हो गए, ये मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन का, या जन्नत के अंदर पहुंच गए, या जन्नत जहन्नुम की जो है वो वादी के अंदर पहुंच गए, क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का, या जो है ना वो बेहोश हो गए, नहीं अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन नमाज में कॉन्सेंट्रेशन, बड़े लोगों का ये मसला होता है, जी नमाज में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, जी नमाज में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। तो भाई इसका बड़ा आसान सा हमारे मशायख ने सिंपल सीधा सादा सा इसका जवाब दिया है, और यही है इसका जवाब, नमाज में कंसंट्रेशन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना। सवाल करने वाले की बरकत से अल्लाह ताला जवाब भी बड़ा अजीब सा डाल देते हैं, यानी बड़े अजीब पैराई में डाल देते हैं। वैसे तो हमारे में शायद सारे जवाब दे चुके हैं, लेकिन जरा एक तो पार्ट वन पार्ट टू, नमाज में कॉन्सेंट्रेशन पार्ट वन। वॉट इज पार्ट वन? कि आपकी निगाहें कहाँ पर हैं और आपके अफआल और सकनात कैसे। सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक आपने तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाए हैं, ठीक है ना। इट मीन्स यू आर इन नमाज विद योर माइंड, आपका दिमाग नमाज के अंदर है। अगर आपने तकबीर तहरीमा में सही तरीके से हाथ उठाए, यानी सुन्नत तरीके से, आपने हाथ कैसे बांधे, अगर सुन्नत तरीके से हाथ बांधे हैं तो दैट मीन्स आपकी कॉन्सेंट्रेशन नमाज के अंदर है। अगर सुन्नत तरीके से जो है वो आपने रुकू किया है, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम अपने घुटनों को पकड़ा करते थे और अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश किया करते थे, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हुए। इसका मतलब ये आप यू आर इन नमाज, आप नमाज के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ठीक है ना। फिर आपने जो है वो बाकी सारे अफाल सुन्नत तरीके से किए, ये है पार्ट वन। अच्छा, इसके अंदर जो है वो निगाह का रहना, खड़े हुए हैं, कयाम में हैं तो क़िबले की तरफ निगाह के रहना, ये सुन्नत है। निगाह की सुन्नत, किधर निगाह रहनी है, रुकू के अंदर निगाह कहाँ रहनी है, सजदे के अंदर निगाह कहाँ रहनी है, और जो आप कादे में बैठे हुए हैं उस वक्त निगाह कैसे रहनी है, उंगली कैसे उठानी है, ठीक है ना। दिस इज ऑल कॉन्सेंट्रेशन इन नमाज पार्ट वन। वॉट इज कॉन्सेंट्रेशन इन नमाज पार्ट टू? पार्ट टू कॉन्सेंट्रेशन इन नमाज का मतलब ये है कि जो अल्फाज इमाम के मुंह से निकल रहे हैं और आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, अगर जहरी नमाज है मगरिब की, इशा की या फजर की, तो इमाम के मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, अच्छा किरात की आवाज है, वैसे तो अल्लाह अकबर और समी अल्लाह लिमन हमदा तो वैसे भी सिर्री नमाज के अंदर भी आपके कानों में पहुंच रहे होते हैं, तो वो जो अल्फाज इमाम के मुंह से निकल रहे हैं उनके ऊपर आपकी तवज्जो के भाई क्या मतलब है इसका, अल्लाह अकबर का क्या मतलब है, समी अल्लाह लिमन हमदा का मतलब क्या है, रब्बना वलकल हम्द का मतलब क्या है, क्या कह रहा हूं मैं या क्या सुन रहा हूं, या आप खुद नमाज पढ़ रहे हैं, अकेली नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है ना। और तिलावत में क्या पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन इन नमाज पार्ट टू, ठीक है। तिलावत को समझने के लिए तो जरा थोड़ी ज्यादा अरबी सीखनी पड़ेगी, और अल्लाह अकबर वगैरह को समझने के लिए थोड़ी कम अरबी सीखने से भी काम बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन इन नमाज, बस इससे ज्यादा कोई इसके अंदर जादू टोना और रूहानी कैफियत वगैरह नहीं है, ठीक है ना। और उनके अंदर पढ़ने की जरूरत भी कोई नहीं है, वो अल्लाह ताला दे देंगे तो दे देंगे, नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है, आप फिक्र ना करें, ठीक है। और तिलावत के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो तिलावत के अंदर कॉन्सेंट्रेशन तो फिर दो तरीके, उसके अंदर भी पार्ट वन और पार्ट टू। उसके पार्ट वन ये है अरबी जुबान का सीखना, ठीक है। और अरबी जुबान के साथ साथ पार्ट वन का दूसरा पार्ट, पार्ट वन का अदर पोर्शन इज तफसीर का सीखना, तफसीर यानी गौर से सुनना समझना, ठीक है ना। तो दिस इज पार्ट वन ऑफ तिलावत, सही है। कॉन्सेंट्रेशन इन तिलावत पार्ट वन इज अरबी जुबान और तफसीर सीखना, सही है। पार्ट टू इज अरबी जुबान सीखने में चले तजवीद को भी शामिल करते हैं, क्योंकि पार्ट टू में डिफरेंट किस्म की चीज होने वाला, ठीक है। तो अरबी तजवीद भी तो अरबी जुबान से मुताल है ना, किरात सही होना, तजवीद का सही होना वगैरह। पार्ट टू ऑफ कुरान कॉन्सेंट्रेशन, जिसके बगैर कुरान की कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाती, तिलावत की कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाती, वो है गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना, ठीक है ना। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का मशहूर कौल है कि अगर लोग गुनाहों से बचते ना तो कुरान मजीद में उनको इतना लुत्फ आता, इतना लुत्फ आता कि वो कभी भी कुरान मजीद जो है ना वो छोड़ना नहीं चाहते, अनलेस के कोई मजबूरी पड़ गई, बस अब जो है ना वो ऐसी जिम्मेदारी है, अब कुरान मजीद के साथ वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती, अब कुरान मजीद को रखना पड़ेगा, वरना दिल नहीं चाहता कुरान मजीद को रखने, शौक, काश के मैं और पढ़ लूं, और पढ़ लूं, और पढ़ लूं, एक रुकू और पढ़ लूं, एक पार और पढ़ लूं, एक, ये इसका ताल्लुक किसके साथ है, गुनाहों के साथ, ठीक है। तो तिलावत की कंसंट्रेशन ये एक बिल्कुल एक अलग चैप्टर समझ लें, और नमाज की कंसंट्रेशन जो है ना वो एक अलग चैप्टर समझ लें, गुनाहों को छोड़ना नमाज की कंसंट्रेशन के साथ जो है ना, ये समझ लें ये एडवांस नमाज है। अगर गुनाहों को छोड़ करके नमाज पढ़ेंगे वो तो अल्टीमेट, वो कंसंट्रेशन तो ऊंचे दर्जे की कोई चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन जो एक बेस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है जो कि हर मुसलमान अचीव कर सकता है ना, वो ये पार्ट वन और पार्ट, है ना। बस आप खुशू खुजू के साथ यानी नजरों और अरकान की सुन्नत तरीके से अदायगी इसके तरीके से नमाज पढ़ लें, और जो है वो बेसिक अरबी वगैरह सीख करके आप जो है ना वो अफ जो कही जाने वाली चीजें, सुनी जाने वाली चीजें हैं उनके मानी समझ लें, दैट्स इट, ठीक है। बाकी इधर उधर देखना ये कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ है, जैसे कि इस हदीस से भी साबित है। और जो ख्यालात की बात आती है ना, ख्यालात, वो ख्यालात एक अलग चैप्टर है, ठीक है ना। उसके अंदर ये है कि बुरे ख्यालात तो इस वजह से आते हैं क्योंकि आप बुरे काम के अंदर लगे हुए होते हैं, बुरे माहौल के अंदर उठ बैठ रहे होते हैं, है ना। बुरी सोचों के अंदर नमाज के बाहर लगे हुए होते हैं तो नमाज के अंदर भी भाई बुरी सोचें ही आएंगी, ठीक है ना। अगर अपने माहौल को आप तब्दील कर लें और अगर आप अपने यानी हरकात और सकनात को जो है कुछ बेहतर बना लें तो अच्छे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो है ना वो नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ के आ रहे थे मस्जिद नबी के अंदर, पढ़ा रहे थे ईमान वालों को, सहाबा कराम को, और उनका जहन नमाज में नहीं था, उनका जहन जो है वो बॉर्डर पे था, बॉर्डर, राइट, या सायतल जबल, जहाँ पे जो है ना मुस्लिम फौजें जो है वो लड़ रही थी, उनकी सफें दुरुस्त कर रहे थे कौन, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम के वजीर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो निगाहों का के बारे में तो यह हदीस में मौजूद है कि इधर उधर जो देखता है ना तो शैतान उसकी नमाज को चक लेता है, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो दबाव बर्बाद हो जाती है। हाँ, मजबूरन किसी मकसद से जो कि नमाज से रिलेटेड मकसद हो तो उस वजह से कहीं इधर देखना, जैसे कि इमाम साहब को देखा कि भाई इमाम साहब जो है ना वो रुकू से उठ रहे हैं तो उन्होंने समी अल्लाह लिमन हमिदा जो है वो उठने के बाद पढ़ी है या उठने से पहले पढ़ी है, क्योंकि अगर आप उस वक्त नमाज में शामिल हो रहे हैं कि जिस वक्त के इमाम जो है वो रुकू में था, तो अब जरूरी है कि आपका रुकू और इमाम का रुकू जो है ना वो मैच कर जाए। अगर इमाम साहब रुकू से खड़े हो गए लेकिन समी अल्लाह लिमन हमिदा उन्होंने खड़े होने के बाद पढ़ा, जैसे कि अक्सर सऊदी अरब के अंदर हमने यही देखा कि खड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद समी अल्लाह लिमन हमिदा पढ़ते हैं, तो अब आपका जो है ना वो रिकत निकल गई, तो वो तो रिकत आपको दोहरानी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर इमाम की तरफ कनखियों से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो नमाज के लिए उसकी जरूरत है ना, तो वो यहाँ पे मशगूल नहीं है। अच्छा, किसी और ने लिखा, मैंने ये भी सुना था कि नमाज ईमान का थर्मामीटर की तरह है, अगर नमाज में दिल लग रहा है तो ये ईमान की मजबूती की अलामत है, नमाज में दिल नहीं लग रहा तो ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। ये जो दिल लगने वाला कौन, ये दिल लगने का मतलब उधर मुझे समझाए ना, दिल लगने का मतलब क्या है, जल्दी से बताए। दिल लगना भाई कॉन्सेंट्रेशन अंग्रेजी का लफ्ज था, अब आपने उसको उर्दू में जो है वो दिल लगना, तो जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन वॉज अ क्वेश्चन मार्क, वॉट डज इट मीन कॉन्सेंट्रेशन, अब उसको जो है आपने उर्दू में एक मतलब एक सवाल दे मारा, दिल लगना, इतनी देर तक जो बात करी थी तो वो यही सब कुछ बोल रहा था भाई, दिल लगने का मतलब क्या होता है। तो ये जो आपने सुना है ना, सुना तो वैसे गलत नहीं है अगर बात को समझ रहे हो तो, ठीक है। दिल लगने का मतलब ये है कि नमाज में वहशत नहीं हो रही, वहशत नहीं हो रही कि क्या मुसीबत है कि मुझे नमाज पढ़नी पड़ रही, क्या मुसीबत है, क्या मतलब अम्मा डंडा लेके खड़ी हुई है, अब्बा डंडा लेके खड़े हुए हैं, या जियाउल हक साहब डंडा लेके खड़े हुए हैं कि नमाज पढ़ो, है ना। बहुत सारे लोग, इस मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुना था कि जियाउल हक के जमाने में जो है ना वो बड़े नमाज नमाज इकामत सलात इकामत सलात, ठीक है। तो खैर अल्लाह ताला उन्होंने तो अपना काम सही किया है, और उन्होंने बिल्कुल उनको उनको मैं कसूरवार नहीं ठहरा रहा, लेकिन हमारे हालात ये हैं कि वो जियाउल हक के डर से या जियाउल हक के छोड़े हुए जो कारिंदे थे, जैसे यहाँ पर भी है ना, तो उनके डर से जो वो जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो नमाज तो फिर बिल्कुल थोड़ी चाह रहे नमाज पढ़ने का, यानी वहशत हो रही है, क्या मुसीबत है यार, काम काम मेरी मर्जी में पढ़ूं ना पढ़ूं, ये कहाँ से मुसीबत आ गई कि तुम जाके इकामत सलात करो, ठीक है। तो इसका बस इतना मतलब है कि नमाज में दिल लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज में अल्लाह अकबर कहा और गायब हो गए फिर उसके बाद आलम बाला में पहुंच गए, ये इसका मतलब नहीं, बात समझ में, ठीक है। तो बाकी ये कि क्लास का टाइम खत्म हो गया है, आइंदा की आयात जो है फिर अगली क्लास में अंदर पढ़ने लिखिए, कोई और सवाल या कोई और कमेंट वगैरह कर देते हैं लिख सकते हैं। अच्छा, इस बुध को इंशाल्लाह हम मिसाली मर्द का जो मान चल रहा है वो मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद अगली बुध से जो है ना वो जो ईमान और कुफर वाली किताब का आप लोगों को मैसेज किया था ग्रुप के ऊपर, तो उसको शुरू करने का इरादा है। तो जैसे कि आपसे दरख्वास्त करी थी कि उस किताब को हासिल करने की कोशिश करें, और अगर कोई पाकिस्तान में रहता है या इंडिया में रहता है, आई एम श्योर इंडिया के अंदर भी ये अवेलेबल होगी, तो वो तो खरीद लें, और जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं तो वो पाकिस्तान या इंडिया से मंगवाने की कोशिश कर लें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुछ साथी जो है पाकिस्तान से ट्रैवल करके जो आएंगे तो उनके हाथ में है ना वो हम ज़रा ज़्यादा कॉपीज मंगवा रहे हैं। तो अगर आपका कोई और इंसान वगैरह नहीं होता तो आप हमसे रब्ता करके, अगर आप रियाज शहर में रहते हैं, क्योंकि हम रियाज में ही रहते हैं, ज़्यादा हमारे शिपिंग वगैरह का कोई इरादा नहीं है, तो रियाज में अगर आप रहते हैं या चलें लेट से दमाम तक भी रहते हैं तो कुछ अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि किताब सबके सामने मौजूद हो जब आप इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलें क्लास को ख़त्म करते हैं। वहाँ अलहमदिल्ला।